ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। शिक्षा विधेयक को सरकार पहली प्राथमिकता में रखकर काम कर रही है, शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरियाल का कथन। मच्छरों के काटने से फैलने वाले जापानी इंसेफेलाइटिस का जोखिम बढ़ा, स्वास्थ्य सेवा विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। सगरमाथा आरोहियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन कानून में सुधार को सरोकार वालों ने बताया जरूरी। और ईरान पर अमेरिका के संभावित नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ गया है तनाव। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल ने कहा है कि सरकार विद्यालय शिक्षा विधेयक को पहली प्राथमिकता में रखकर काम कर रही है। काठमांडू में आयोजित परामर्श गोष्ठी में मंत्री पोखरियाल ने कहा कि शिक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया पारदर्शी और सहभागिता मूलक होगी। उन्होंने संबंधित पक्षों के सुझावों को केवल चर्चा तक सीमित न रखकर कानून और नियमों में शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने संघ, प्रदेश और स्थानीय सरकारों के बीच अधिकारों के स्पष्ट बंटवारे और प्रभावी समन्वय की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का कम से कम 20% निवेश किए जाने की आवश्यकता बताई। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा है कि बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कृषि उत्पादन और रोजगारी के अवसर बढ़ाने के साथ जनसंख्या पलायन की समस्या कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सुनसरी मोरंग सिंचाई परियोजना के स्थलगत अध्ययन के दौरान मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि सिंचाई को केवल नहर निर्माण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंचाई में निवेश का लाभ कृषि उत्पादन के जरिए मिलता है, इसलिए सिंचाई के साथ कृषि उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के कार्यक्रमों को भी एकीकृत रूप से आगे बढ़ाना जरूरी है। भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल ने कहा है कि भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए संघ, प्रदेश और स्थानीय तीनों स्तर की सरकारों को जिम्मेदार बनना होगा। कंचनपुर की दोधारा चांदनी नगरपालिका में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री रावल ने कहा कि सरकार भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देकर काम कर रही है और प्रदेश तथा स्थानीय सरकारों से भी सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए नीतिगत सुधार पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सभी पक्षों को एकजुट होने की अपील भी की। प्रधान न्यायाधीश डॉ मनोज कुमार शर्मा ने कहा है कि न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में बार और बेंच की महत्वपूर्ण भूमिका है। तन्हू जिला अदालत बार इकाई द्वारा दमोली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि न्याय प्रदान करना सभी की साझा जिम्मेदारी है, इसे प्रभावी और जनमैत्री बनाने के लिए न्यायपालिका से जुड़े सभी पक्षों के बीच सहयोग और समन्वय जरूरी है। प्रधान न्यायाधीश शर्मा ने नागरिकों का न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखने के लिए न्याय प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। मच्छर के काटने से फैलने वाले जापानी इंसेफेलाइटिस के संक्रमण और इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य सेवा विभाग के परिवार कल्याण महाशाखा ने लोगों से इसके जोखिम को लेकर सतर्क रहने और सुरक्षित उपाय अपनाने की अपील की है। महाशाखा के अनुसार देश के 25 जिलों के 59 स्थानीय तहों में 80 लोगों में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। इनमें से 86% मरीजों ने जेई टीका नहीं लगवाया था। अब तक संक्रमित लोगों में 21 की मौत हो चुकी है और मृतकों में से किसी ने भी जेई का टीका नहीं लगवाया था। सबसे अधिक मामले झापा में 10, कैलाली और मोरंग में 7-7 तथा सप्तरी और कंचनपुर में 6-6 सामने आए हैं। हालांकि मुख्य रूप से तराई और भीतरी मधेश में पाए जाने वाले इस रोग की पुष्टि इलाम, काभरे पलांचो, काठमांडू, सिंधुली और सुर्खेत जैसे पहाड़ी जिलों में भी हुई है। कुष्ठ प्रभावित लोगों को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और सक्षम नागरिक के रूप में समाज में स्थापित करने पर जोर दिया गया है। काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राज्य को सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाने वाले कुष्ठ प्रभावित लोगों के लिए आय अर्जित करने के अवसर और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ ने कहा कि कुष्ठ रोग के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवार तथा समाज से अलग होने वाले लोगों के आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। उन्होंने सरकार से इसके लिए कानूनी व्यवस्था करने की मांग की। नेपाल में करीब 2,00,000 लोग कुष्ठ रोग से प्रभावित हैं। इनमें लगभग 30,000 लोग दिव्यांगता का शिकार हुए हैं, जबकि हर साल करीब 2,000 से 2,500 नए संक्रमण सामने आने की जानकारी दी गई है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। विश्व की सर्वोच्च चोटी सगरमाथा पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन कानून में सुधार की मांग की गई है। सगरमाथा आरोही संघ के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने वर्ष 2035 में बने पर्यटन कानून को समयानुकूल और पर्वतारोहियों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया। प्रतिनिधि सभा सदस्य मिंगमा डेविड शेरपा ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को आधुनिक बनाने और पर्वतारोहियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून में सुधार जरूरी है। सगरमाथा आरोही संघ की अध्यक्ष माया शेरपा ने पर्वतारोहियों और माउंटेन गाइड की सुरक्षा अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रभावित नीति बनाने और अलग कल्याणकारी कोष स्थापित करने की मांग की। आकर्षक वेतन का प्रलोभन देकर विदेश भेजने के नाम पर रकम ठगने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में काभरे पलांचुक के नवीन लामा और सल्यान के रमेश रेवले शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक नवीन ने तीन लोगों को मलेशिया भेजने के नाम पर 14 लाख रुपए, जबकि रमेश ने एक व्यक्ति को अमेरिका भेजने के नाम पर 3 लाख रुपए लिए और उसके बाद संपर्क से बाहर हो गए। दोनों को काठमांडू उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय की टीम ने गिरफ्तार किया है। ललितपुर के पुलचौक स्थित मानवाधिकार आयोग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे लघुवित्त ऋणी सरकार के साथ 14 बिंदुओं पर सहमति के बाद आज घर लौट गए। सरकार और ऋणियों के प्रतिनिधियों के बीच कल 6 भाद्र को हुई वार्ता में सहमति बनने के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज सुबह करीब 9 बजे साझा यातायात की बसों की व्यवस्था कर 323 ऋणियों को 8 बसों के जरिए उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के अनुसार झापा, मोरंग, सरलाही, महोत्तरी, सिंधुली, बारा, परसा और नवलपरासी सहित विभिन्न जिलों के ऋणियों को उनके अपने क्षेत्रों की ओर भेजा गया। रुकुम पश्चिम की सानीभेरी गांवपालिका 8 एकांत स्थित मध्य पहाड़ी लोकमार्ग में इलेक्ट्रिक वाहन की टक्कर से मां बेटी की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सिमली से चौरहजारी की ओर जा रहे इलेक्ट्रिक वाहन ने आज सुबह मुसीकोट खलंगा से सुरखेत की ओर जा रहे वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में गुलमी की 26 वर्षीय स्वस्तिका पौडेल और उनकी 2 वर्षीय बेटी सांदिका ग्यवाली की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल मां बेटी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। टक्कर मारने वाले इलेक्ट्रिक वाहन और उसके चालक को पुलिस ने नियंत्रण में लिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान पर अमेरिका के संभावित नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की ओर से लगाए जाने वाले नए प्रतिबंधों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने इसे दूसरे देशों पर अमेरिकी दबाव थोपने की कोशिश बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिकी वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसेंट ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंधों की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने चीन से भी इन प्रतिबंधों में सहयोग करने की अपील की है। हालांकि चीन ने नए प्रतिबंधों का विरोध करते हुए कहा है कि इससे पश्चिम एशिया का संकट हल नहीं होगा। चीन ने विवाद का समाधान कूटनीतिक तरीके से करने की वकालत की है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीददार है और ईरान के 80% से अधिक तेल की खरीद करता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा विधेयक को सरकार पहली प्राथमिकता में रखकर काम कर रही है, शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरियाल का कथन। मच्छरों के काटने से फैलने वाले जापानी इंसेफ्लाइटिस का जोखिम बढ़ा, स्वास्थ्य सेवा विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। सगरमाथा आरोहियों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन कानून में सुधार को सरोकार वालों ने बताया जरूरी। और ईरान पर अमेरिका के संभावित नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ गया है तनाव। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।